नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलदार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नए अभियान के पद चाप गूंजे, चलो अब एक नए अभियान के पद चाप गूंजे, मौत की सुनसान सोनी वादियों में फिर कि नूतन सर्जना के राग भर दे, शोक गीतों भरी इन घाटियों में फिर दरकती हिमशिलाएं, दरकती हिमशिलाएं, सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है, यह प्रकृति की गति रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है, पराजय झेलने पर भी शिविर में न्याय की हरदम मशाले जीत की जलती रही है, पराजय आज का सच है, पराजय आज का सच है, समर तो शेष है फिर भी, उठो ओ सर्जकों नव जागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है, नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है।
ओम शांति। दूर उस आकाश की गहराइयों में पिक नदी से बह रहे हैं आदि योगी, शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, मौन से सब कह रहे हैं आदि योगी, योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन मन श्वास शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन धनन धननन, उतरे मुझ में आदि योगी, योग धारा छलक छननन, श्वास शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन धनन धननन, उतरे मुझ में आदि योगी, पिस दो अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा, पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा, भस्म वाली रस्म कर दो आदि योगी, योग उत्साह रंग भर दो आदि योगी, बज उठे ये मन सितारे जनन जननन जनन जननन, श्वास शाश्वत सनन सनन, प्राण गुंजन धनन धननन, उतरे मुझ में आदि योगी। दूर उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदि योगी, भक्ति में शिव को आदि योगी कहा गया है, परंतु वास्तव में वो योगेश्वर है, योगियों का ईश्वर। उस आकाश की गहराइयों में वो बह रहा है जैसे कोई नदी शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं। मौन से सब कह रहे आदि योगी, चारों तरफ सन्नाटा टपक रहा है, शून्य है। उस शून्य निस्तब्धता में, निःशब्दता में सब कह रहे आदि योगी, योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन मन। असंख्य योगी जन उस महायोगी को या योगेश्वर को याद कर रहे हैं, कैसे सन्नाटे में, शून्य में, और योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन मन। ये शरीर ये मन योग में हो जाए, ये श्वास ये प्राण शाश्वत, प्राण गूंज उठे, उतरे मुझ में आदि योगी, योग धारा छलक छनन। इसके दो अर्थ हो सकते हैं कि वो परमात्मा या उसकी याद निरंतर हो जाए योगी के मन में, या फिर ये गीत केवल और केवल ब्रह्मा के लिए है कि जिसमें वो योगेश्वर वो आदि योगी उतरे, उतरे मुझ में आदि योगी, योग धारा छलक छनन, निरंतर योग की अविरल धारा छलकती रहे, छनन छनन, श्वास शाश्वत, सनन सनन, प्राण गुंजन, धनन धनन, उतरे मुझ में आदि योगी, पीस दो अस्तित्व मेरा, कर दो चूरा चूरा। ये जो मैं है, ये जो मैं और ये जो अहंकार है, और ये जो अहंकार से रचित संसार है भीतर, उसको नष्ट कर दो, समाप्त कर दो, पिस दो अस्तित्व मेरा, तू और मैं, जब मैं हूं तब वो नहीं और जब वो है तब मैं ना ही, पूर्ण होने दो मुझे, संपूर्ण होने की चाह है। और संपूर्ण चेतना तभी हो सकती है जब वो परम चेतना समान हो जाए या परम चेतना के साथ एक हो जाए। पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा, भस्म वाली रस्म कर दो आदि योगी, योग उत्सव रंग भर दो आदि योगी। बज उठे ये मन सितारी, झनन 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 झनन, श्वास शाश्वत, सनन सनन। आवाज तो हो रहा है परंतु ये आवाज अनहद है, द साउंडलेस साउंड, द चांटलेस चांट, प्राण गुंजन घनन घनन, उतरे मुझ में आदि योगी, उतरे मुझ में आदि योगी।
Oh, good.
यज्ञ इतिहास की इस कड़ी में भिन्न भिन्न घटनाओं की चर्चा करते करते आज हम पहुंचे हैं 106। बहुत सारी घटनाओं की हमने चर्चा की और आज एक बहुत महत्वपूर्ण घटना की चर्चा करेंगे। भक्ति में कहा जाता है, भगवान ने यह संसार रचा नहीं, रचता रचना का गायन कम, यह संसार भगवान की लीला है। क्योंकि यदि ये कहा गया कि उसने रचा है तो फिर प्रश्न खड़े होते, क्यों रचा है, किस लिए रचा है? क्या वो बोर हो गया था? क्या उसे कोई काम नहीं था? उसने रचा क्यों? इसलिए रचने का प्रश्न नहीं, भक्ति में गायन है, भगवान ने यह संसार की रचना नहीं, यह उसकी लीला है। और लीला किस लिए की जाती है? प्ले। आगे क्या होगा? किसी बच्चे को पूछो, तुम खेलते क्यों हो? वो कहेगा, मैं खेलता हूं, बस खेलता हूं। आगे क्या करोगे? बस खेल रहा हूं, आगे का पता नहीं। एनर्जी एंजॉयज इटसेल्फ डांसिंग। परमात्मा परम ऊर्जा है और वो ऊर्जा क्या करती है? खेल करती है। और उसी खेल को भक्तों ने लीला कहा और परमात्मा को लीला धर कहा। और भगवान जब धरा पर आता है तो वो लीला करता है, वो खेल करता है। और खेल में फ्यूचर नहीं होता है, केवल प्रेजेंट होता है। क्योंकि खेल एक ऐसी चीज़ है कि जब कोई खिलाड़ी खेलता है तो आगे क्या होने वाला है उसकी उसे कोई चिंता नहीं होती। परंतु घर गृहस्थी में रहता है, कोई दूसरे कार्य करता है तो चिंता होती है। भगवान आकर काम नहीं करता, वो खेल करता है। क्योंकि काम अगर करे तो पूछा जा सकता है, अब इसके आगे क्या करोगे? परंतु जब वो लीला कर रहा है तो बस लीला कर रहा है और उसकी लीला चल रही है। और जब परमात्मा वास्तव में धरा पर आता है तो उसकी लीला बड़ी अद्भुत है, बहुत अद्भुत। वो भी लीला करता है, वो भी खेल करता है। तो आज की इस कड़ी में हम भगवान कौन सी लीला करता है इसकी चर्चा करेंगे, या फिर भगवान का बदलता हुआ पार्ट इस विश्व नाटक में। उसके 7 प्रकार के पार्ट है जब वो आता है, और वो जब पार्ट पूरा होता है तब वो कोई नया पार्ट नहीं चालू करता। उसके 18 कारण है कि क्यों वो अपने इसी पार्ट तक सीमित रहता है और आगे नहीं बढ़ता। तो वो कौन कौन से पार्ट है? इसके पहले कि हम इसकी चर्चा करें, पहले प्रश्न की, दूसरे प्रश्न की थोड़ी सी प्रस्तावना। इस विश्व मंच पर एक बहुत ही प्रसिद्ध एक्टर हुआ कवि, बहुत प्रसिद्ध, द लिटिल ट्रैम्प। द लिटिल ट्रैम्प, ट्रैम्प अर्थात आवारा। इस किरदार को बजाने वाला साइलेंट फिल्म इरा में एक एक्टर था, चार्ली चैपलिन, जिसने एक किरदार बहुत फेमस कर दिया। कौन सा किरदार? द लिटिल ट्रैम्प, ट्रैम्प अर्थात आवारा व्यक्ति। वो साइलेंट फिल्म की दुनिया में, और ये एक्टर बहुत फेमस हुआ, हंसोड एक्टर, एक कॉमेडियन, एक विनोदी एक्टर। अपने विनोद से विश्व की आत्माओं के दिलों को उसने जीता और बहुत प्रसिद्ध हुआ, बहुत प्रसिद्ध। तो जब वो 50 वर्ष का हुआ तो लोगों ने सोचा ऐसे विशेष एक्टर की वर्षगांठ मनानी चाहिए। ये ब्रिटिश एक्टर था, पूरे यूरोप में एक प्रतियोगिता की घोषणा की गई कि जो भी चार्ली चैप्टन जैसी एक्टिंग करेगा ऐसे 100 लोग सामने आ जाए और उनकी कंपटीशन होगी, और उस कंपटीशन में जो 3 लोग हैं जो सबसे एकदम क्लियर कट चार्ली चैप्लिन दिखे, चार्ली चैप्लिन अर्थात एक टोपी जो आड़ी टेढ़ी, फिर मूछ छोटी सी, फिर टाइट सा कोट और उसका बैगी पैंट और हाथ में एक छड़ी, ये है चार्ली चैप्लिन। खास उस एक्टर ने अपना ये किरदार बनाया था और अलग अलग परिस्थितियां दिखाते थे कैसे वो फंस जाता था और कैसे बाहर आता था। साइलेंट फिल्म था का युग था वो। तो चार्ली चैप्लिन ने सोचा, चार्ली चैप्लिन खुद उस वो अभी जिंदा है, उसके जिंदा होते ही ये प्रतियोगिता आयोजित की गई कि ऐसे 100 चार्ली चैप्लिन जैसे जो एक्टिंग करने वाले हैं उसके जैसे दिखने वाले हैं वो आएंगे, उसमें से 3 चुने जाएंगे। चार्ली चैप्लिन ने सोचा मैं भी प्रतियोगिता में भाग लेता हूँ क्योंकि आखिर मेरे जैसी मेरी तो प्रतियोगिता है और मुझे तो फर्स्ट आना ही है, ओरिजिनल मैं हूं तो मुझे तो फर्स्ट आना ही है। तो वो भी किसी गांव में पहुंच जाता है और चार्ली चैप्लिन बनने की इस प्रतियोगिता में भाग लेता है और उसे कॉन्फिडेंट होता है क्योंकि सब लोग मेरी तो नकल कर रहे हैं तो ओरिजिनल तो मैं हूं तो जीतना तो मुझे ही है। तो देखता कितने सारे लोग आ गए, छोटी छोटी मूछ, सब अपनी अपनी मूछें काट के, सब टोपी पहने हुए, हाथ में छड़ी और 4 ढाल, वो वाली चार्ली चैप्लिन वाली। पर आश्चर्य तो उसे तब होता है जब उसका 2nd नंबर आता है। फर्स्ट नंबर पर कोई और है और वो 2nd नंबर पर है, ओरिजिनल 2nd नंबर पर और डुप्लीकेट 1st नंबर पर। तो उसे आश्चर्य होता है ये क्या हो गया। और इसमें आश्चर्य की भी कोई बात नहीं है क्योंकि रामलीला अगर होती है तो जो राम था ओरिजिनल, उसने जो कुछ किया वो तो स्पॉन्टेनियस था, अपने आप, उसे थोड़ी पता था सीता चोरी होने वाली, वो तो नेचुरल हो गई, उसे थोड़ी ना पता है सीता चली गई, अब मुझे एक्टिंग करनी है। वो कोई रोने की क्लास थोड़ी ना ज्वाइन की थी उसने, वो तो वास्तव में रो रहा है, हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग ने नहीं, वो झूक जा रहा है। पर ये जो रामलीला का जो राम है उसके टास उसमें कोई भूल चूक नहीं हो सकती, उससे ओरिजिनल राम से भूल चूक हो सकती है पर जो एक्टर है उससे कभी नहीं हो सकती क्योंकि सारे डायलॉग रटे हुए, ट्रेनिंग ली हुई है। ओरिजिनल से गलती हो सकती है परंतु डुप्लीकेट से कोई गलती कभी नहीं हो सकती क्योंकि फुल प्लानिंग है, उसे सब पता है कब क्या करना है, ओरिजिनल को तो कुछ पता नहीं, वो तो जो है वो है। तो एक है ओरिजिनल, एक है डुप्लीकेट। यदि मनुष्यों के साथ ये सब हो सकता है तो भगवान के साथ भी हो सकता है। इस प्रश्न के ऊपर बाद में आते हैं, इसके 18 कारण, परंतु पहला प्रश्न है भगवान के वो कौन से पार्ट है। तो वह भगवान के 4-7 प्रकार के पार्ट है। सबसे पहला, वो जब धरती पर आया, फर्स्ट पार्ट, ब्रह्मा तन, किसी को पता ही नहीं चला कि वो है क्योंकि बाबा आते थे कुछ भी नहीं बोलते थे। ये शायद बहुत ही कम लोगों को पता है कि ब्रह्मा बैठा हुआ है दादा लेखराज और उस तन में शिव बाबा की प्रवेशता है और वो परमात्मा केवल देखता है, बोलता कुछ भी नहीं, साइलेंट गॉड। अकेला ब्रह्मा बैठा है और उस तन में परमात्मा प्रवेश, पर बोलता कुछ नहीं है, कुछ नहीं करता है, परंतु ब्रह्मा अकेला है। ब्रह्मा नाम नहीं है अभी, दादा लेखराज, इतिहास में हमने देखा कि बाबा अकेले चले जाते थे समुद्र तट पर, एकांत में बैठे रहते थे। भगवान ने कब प्रवेशता की ये बताना बहुत मुश्किल है, वो 36 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है, 34, 33 कुछ भी हो सकता है, वह अतिथि है, उसके आने और जाने की कोई तिथि तारीख नहीं होती। तो पहला पार्ट है भगवान का साइलेंट स्पेक्टेटर, वो साक्षी होकर बैठता है मौन मुख। आदि योग मौन सन्नाटे छल करे छनन छनन, ये उसका पहला पार्ट था। और यदि कोई 7 दिन मौन रहे और उसको कहो बोलो, बोलने की इच्छा होती है, 7 दिन छोड़ो, 1 दिन दिन भर मौन रहो और शाम को कहो बोलो, डिबेट आर्गुमेंट, इच्छा ही नहीं होती है। ये कितना समय से ऊपर मौन बैठा है, आए बराबर सीधा 10 पेज की वाणी चलाएगा क्या? वो आता है और चुप देखता है, ये क्या हो गया, मैंने क्या किया था, स्वर्ग बनाया था और ये हो क्या गया यहां पर, शायद ऐसे सोच रहा होगा वो। क्या सोच रहा होगा वो आप डायरेक्ट उससे पूछो, तुम जब पहली बार आए तो तुमने क्या सोचा, आए बराबर सीधा शिक्षा वार्निंग ये वो चालू नहीं करता है, वो चुप रहता है। अगर सीधा चालू कर दिया होता तो मैं भगवान हूं, तुम ब्रह्मा हो, मैं नई सृष्टि स्थापित करने आया हूं, ये सब शास्त्र वेद उपनिषद सब एक तरफ, ये मैंने लिखे ही नहीं, मैं ये हूं, तो घबरा जाते सब, ये हो क्या रहा है। एक सर्जन डॉक्टर पेशेंट से कहता है ऑपरेशन से पहले, सुनो मेरे नियम बहुत कड़े हैं, ऑपरेशन के अगले ही दिन तुमको चलना पड़ेगा, ये मेरा स्ट्रिक्ट नियम है, मैं पेशेंट को बिठाता नहीं हूँ, ऑपरेशन हो गया अगले ही दिन तुमको 1 घंटा चलाऊंगा और उसके दूसरे दिन 3 घंटा चलाऊंगा और उसके अगले दिन तो तुमको पूरा घूमना पड़ेगा 1 किलोमीटर, ये सर्जरी ऐसे करता हूं, चलना पड़ेगा तुमको। पेशेंट पूछता है ऑपरेशन के समय तो मैं सो सकता हूँ क्या, लेट सकता हूँ कि नहीं, एटलीस्ट भगवान जो है वो माइल्ड, धीरे 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 धीरे। तो सबसे पहला पार्ट भगवान के 7 पार्ट, वो आया उसके तन में और चुपचाप देखता रहा, शायद कई समय तक हो ऐसा हुआ होगा, वो कोई नहीं बता सकता कितना समय। सेकंड पार्ट साक्षात्कार, वो आया और सीधा साक्षात्कार कराने चालू कर दिया, लोगों को लगा ब्रह्मा से हो रहे, लोगों को लगा ब्रह्मा ही कृष्ण है, हमने पहचाना नहीं इसको, ये तो कृष्ण किया, ये तो भगवान है स्वयं, पर वो चुपचाप अंदर बैठा हुआ था और वो करा रहा था और किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि वो करा रहा है, सबने सोचा यही कृष्ण है, जिसको तिसको सबको ब्रह्मा के में किसका साक्षात्कार हो रहा था, कृष्ण 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 कृष्ण, राम का नहीं कृष्ण की, कृष्ण का साक्षात्कार, क्योंकि सबसे ज्यादा भक्ति भारत में राम की नहीं कृष्ण की होती। तो ये उसका सेकंड पार्ट था, तो आया उसने सबसे पहले चुपचाप बैठा रहा और फिर क्या कर दिया, जो सामने आ रहा है उसको साक्षात्कार। और यहां तक भी सीमित नहीं रहा, बाबा कश्मीर गए 3 मास कश्मीर रिट्रीट, जिसकी हमने इतिहास में चर्चा की, तब भी साक्षात्कार चालू थे उधर, इसलिए तो ज्यादा और चिंता हो गई बाबा को, ये हो क्या रहा है, मैं तो यहां हूं फिर भी साक्षात्कार उधर चालू है। तो सेकंड पार्ट साक्षात्कार पार्ट 3, फिर पीयू के द्वारा जो हमने देखा इतिहास में पीयू का पार्ट, कि वो एक परम शक्ति है जो प्रवेश कर रही है और वो ब्रह्मा नहीं है, और फिर उसने कहा कि ये ब्रह्मा है ये मम्मा है ये अलग है मैं अलग हूं, उसने अपनी पहचान दी और ब्रह्मा को उसकी पहचान दी और ये बताया कि मैं जो प्रवेश कर रहा हूं वो अलग है, वो परम शक्ति है जो प्रवेश हो रही है और वो अलग है, ब्रह्मा अलग है मैं अलग हूं, ये उसका 3रा पार्ट। 4th माउंट आबू, अब उसने अपना ज्ञान का विस्तार किया, ज्ञान का स्पष्टीकरण दिया संपूर्ण, जिसको हम कहते हैं साकार मुरलिया, ज्ञान को स्पष्ट किया और वो भी कैसे, धीरे 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 स्लोली स्लोली सृष्टि चक्र कैसे घूमता है, कैसे पुनरुक्ति होती है, संगम क्या है, ये युग कौन सा है और भगवान कब आते हैं और भगवान का रूप क्या है। पहले भगवान का रूप भी तीन रूपों से गया है, पहले ब्रह्मा ही भगवान व्यक्ति, बाद में ज्योतिर्लिंगम एक शेबिट अंगुष्ठाकार अंडाकार या ज्योतिर्लिंगम, ये तीन, और फिर बाद में सब कैंसिल और ये जो ज्योतिर्लिंगम था आत्म प्रकाश भाई को कहा बाबा ने इसमें एक बिंदी लगा दो, बाप इतना बड़ा थोड़ी होता है वो बिंदी है ज्योति बिंदु। स्लोली स्लोली तो धीरे 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 भगवान ने अपना पार्ट खोला, बताया जैसे मैं आत्मा हूँ तुम भी आत्मा हो, ये संगम युग है, विनाश सामने खड़ा है, ये सृष्टि खत्म होगी और नई सृष्टि आएगी। धीरे धीरे सारा ज्ञान स्पष्ट किया। तो ये था पार्ट नंबर 4। ये चला कहाँ पर, हिस्ट्री हॉल में, 1964 होली हिस्ट्री हॉल बना, होली के समय उद्घाटन हुआ। 1974 मेडिटेशन हॉल बना, वहाँ पर पाठ चला। 1983 ओम शांति भवन में पाठ चला, कब तक, 95 तक। लास्ट फर्स्ट मुरली डायमंड हॉल जो हमने इतिहास में उस दिन देखा, 31 दिसंबर 1996 की फर्स्ट अव्यक्त वाणी। तो 97 से पार्ट चेंज, 96 से पार्ट चेंज एंड से। तो यहाँ पर बाबा का ये पार्ट चला, कौन सा, पहला तो अव्यक्त ले लो 69 तक ब्रह्मा के द्वारा साकार मुरलिया सारी, तो हिस्ट्री हॉल में वो पार्ट। और उसमें ही यदि हम डिवाइड करें, नेक्स्ट पार्ट जो चला वो था अव्यक्त पार्ट। और अव्यक्त पार्ट कहाँ कहाँ चला, फिफ्थ पार्ट है अव्यक्त, फिफ्थ या सिक्स्थ, फिफ्थ। तो ये कहाँ कहाँ चला, एक तो हिस्ट्री हॉल में ही, फिर मेडिटेशन हॉल और फिर ओम शांति भवन। नेक्स्ट पार्ट जो सबसे लंबा चला, सिक्स्थ पार्ट, अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी, कहाँ पर, डायमंड हॉल में। यहाँ का जो था वह पहले एक एक से मिलते थे, फिर छोटे छोटे ग्रुप से मिलते थे, फिर यहाँ पर बड़े बड़े ग्रुप से मिलते थे, और फिर डायमंड हॉल में स्टेज का जो पार्ट चला वो बहुत लंबा समय चला, अव्यक्त बाप दादा का पार्ट। कब से, 96 से तो लेकर 2017-18 के आसपास तक। यहाँ छठवां पार्ट पूरा हुआ और उसके बाद में आया सातवां पार्ट, वो कौन सा है, रिकॉर्डेड वीडियो। तो ये ऐसे 7 पार्ट है भगवान के जो इस धरा पर चले। तो उसने शुरू कहाँ से किया, मौन से, फिर उतरा साक्षात्कार, और फिर उसने अपनी थोड़ी थोड़ी पहचान देना चालू की, थोड़ी थोड़ी, और फिर धीरे धीरे संपूर्ण पहचान दी, और फिर और आगे बढ़ा, फिर अव्यक्त उसने शिक्षाएं देनी चालू की, गहरी शिक्षाएं, प्यार भी देना चालू किया और पालना देनी चालू की और सेवाओं का विस्तार की शिक्षाएं देनी चालू की, और फिर धीरे धीरे अपने पार्ट को समेटते गया। इस जो सिक्स्थ पार्ट है उसमें भी डिविजन से, कौन कौन से डिवीजन, कभी 6 से 8 घंटा बहुत समय तक, और फिर 4 से 5 घंटा, और फिर 3 से 4 घंटा, फिर 1 से 2 घंटा, और फिर लास्ट लास्ट में 1 घंटा, और फिर उसके भी लास्ट में 5 मिनट, और फिर थोड़ी सी दृष्टि, कम कम करते गया। उसने अपने पार्ट को क्या किया, समेटा धीरे 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 धीरे। और यहाँ कभी कभी रात रात भर ओम शांति भवन का, शाम को आ रहे हैं 6 बजे और फिर जा रहे हैं सुबह सुबह, गुड मॉर्निंग करके। बाबा बैठे रहते थे, भाई लोग सब चले जाते थे, उसको थोड़ी ना दूसरे दिन काम करना, वो बैठा रहेगा, जाके नींद वगैरह करके अमृत वेला आ जाते थे। बाबा मिल रहे हैं पार्टियों से, अलग अलग पार्टियां हैं, मिलन चालू है। तो इस तरह से भगवान का ये पाठ है। स्लोली स्लोली वो आया और फिर अपने पाठ का विस्तार किया और फिर धीरे धीरे समेट दिया उसने। जैसे स्टार्ट वैसे ही चुप हो गया, धीरे धीरे चुप हुआ, एकदम चुप नहीं हुआ। कई बार बताता रहा बीच बीच में, ये होमवर्क नहीं करोगे तो फिर बाप नहीं आएंगे, पर फिर अगली बार देखा फिर आ गया, जबकि होमवर्क किया ही नहीं, फिर भी आ गया। और आते रहा, परंतु युक्ति से, इतना युक्ति से कि प्रोग्राम चालू ही रहा, किसी को पता ही नहीं चला कि वो चला गया, क्योंकि प्रोग्राम तो अभी भी चल रहा है उसके आने का। तो ये उसके ऐसे 7 पार्ट है। अब इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या भगवान अपना नया पार्ट चालू करता है, या फिर क्या आवश्यकता है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं नहीं के। अगर एक रीति से देखा जाए तो वो स्वतंत्र है, वो जब चाहे जहां चाहो वहां पर प्रवेश कर सकता है, आ सकता है, जा सकता है, एक रीति से अगर देखा जाए। पर मुरलियों में आता है कि वो सर्वशक्तिवान है, इसका अर्थ ये नहीं कि मरी हुई चींटी को जिंदा कर दे, ये सब मुरलियों में आता है। सबसे पहला कारण कि उसका पाठ साकार पाठ समाप्त तो हो गया और अब कोई नया पाठ नहीं है। उसके 18 कारणों में सबसे पहला कारण, जितना ज्ञान उसे देना था उसने दे दिया है। क्या कुछ ज्ञान देना और बाकी है कि वो और आ जाए और कहे अब सुनो मैं तुमको नई बात बताता हूं। इतना ज्ञान उसने दिया है, इतना ज्ञान सुनाया, कितना सुनाएगा, और जितना देना चाहिए था वो सारा दे चुका है। दूसरा योग, जितना राजयोग उसने सिखाया, कितनी सारी ड्रिल्स है, एक एक अव्यक्त मुरलियों में बैठकर उसने ड्रिल कराई है, 1 सेकंड में अभी अशरीरी हो जाओ, कितनी बार ड्रिल्स कराई है, योग के गहरे गहरे राज अव्यक्त मुरलियों में खोले हैं। यदि हम कहते हैं कि हमें तो नहीं पता, इसका अर्थ तुमने अव्यक्त मुरलियां नहीं पढ़ी है। एक एक अव्यक्त मुरली 69 से चालू करो तो देखोगे उसमें कितनी गहराई है। एक ही पैराग्राफ काफी है पूरे दिन के लिए, इतनी डीप बात है, इतनी साइकोलॉजी की बात है उसमें। तीसरा धारणा, सब कुछ ऐसा कोई टॉपिक नहीं है धारणा का, ऐसा कोई दिव्य गुण नहीं है जिसके विषय में उसने चर्चा नहीं की कि अभी कोई दिव्य गुण बाकी रह गया था, वेट मुझे आने दो वापस, ये मेरा रह गया था, ये मेरा, इसके बारे में तो मैंने बोला ही नहीं, भूल गया था मैं, ऊपर जाके याद आया पाठ पूरा होने के बाद। भूल उससे होती नहीं, हाँ जो डुप्लीकेट है एक रीति से देखा जाए उससे हो सकती है कॉपी करने में, अगर ठीक से देखा नहीं तो कॉपी में गलती हो सकती है, पर ये ओरिजिनल है, सब धारणाएं उसने सिखा दी। चौथा सेवा, GYDS में S, ऐसी कोई सेवा की पॉइंट नहीं है जो उसने नहीं बताई, या फिर उसने जितना बताया उससे कई गुना अधिक बच्चों ने विस्तार कर दिया अपनी बुद्धि चलाकर, और वही वो चाहता था कि ऐसा ऐसा करो, विंग्स बना दिए 85, जो हमने इतिहास में उस दिन देखा कैसे एक के बाद एक विंग बनी। 85 ईयर था यूथ ईयर UN का, इसके लिए सबसे पहली विंग बनी यूथ विंग, पदयात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक, साइकिल रैली, फिर मेडिकल विंग, एजुकेशनल विंग, कितनी सारी विंग्स एक के बाद धीरे धीरे बनती गई और कितना विस्तार हो गया। अभी एक एक विंग की एक एक प्रदर्शनी है, एक एक विंग की एक एक प्रदर्शनी है, एक एक विंग के अपने इंडिपेंडेंट सारी एक्टिविटीज है, इतना विस्तार। और उसके बाद में ऑनलाइन लॉकडाउन के बाद विस्तार ही विस्तार सेवाओं का, और कितना सिखाना बाकी है सब बता दिया उसने। उस दिन एक क्लास में, इसी यज्ञ इतिहास की एक क्लास में हमने देखा था ना, पाम्पलेट, पोस्टर्स, पिक्चर्स, ये सब 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 उसने सिखाया। तो ये चार जो सब जानते हैं, सभी कारण। उसके बाद में पांचवा, उसने माया के विषय में सब कुछ बता रखा है। क्या ऐसी कोई पॉइंट रह गई है जो उसने नहीं बताई? माया किस किस रूप में आएगी, कैसे कैसे आकर्षित करेगी, कैसे कैसे भ्रमित करेगी, ओरिजिनल क्या है और नकली क्या है। चार्ली चैपलिन नंबर 2 पर है, ओरिजिनल नंबर, नकली जो है नंबर 1 पे चल रहा है। चार्ली चैपलिन 2 पर आ गया, उसे ही खुद आश्चर्य है ये क्या हो गया। कोई कोई लोग होते हैं अभिनेता की एक्टर एक्टिंग करते हैं, पर जो अभिनेता है वो भी देख के कहते हैं कि ये तो मेरे से भी ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर रहा है मेरी। माया का ऐसा कोई रूप, ऐसी कोई मुरली है जिसमें माया शब्द नहीं है। हर चीज माया के बारे में सब कुछ बता दिया, ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, सब कुछ बता रखा। अगला, जितनी चेतावनियां देनी थी वो सारी चेतावनियां वो दे चुका है, वार्निंग्स या प्रिडिक्शंस, भविष्यवाणियां, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा, सब होगा, सब बता दिया। ये यज्ञ भी हिलेगा, सब हिलेगा, पेड़ हिलेगा, छटनी, पत्ते झड़ेंगे, सब होगा और इधर ही होगा। कल रात में भी कह रहे थे कि बाबा के पास एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और बाबा ने कहा ये चीज मैं किसी को नहीं देता हूं, बाकी सब दे देता हूं तुमको। साक्षात्कार छोड़ो, दिव्य बुद्धि की चाबी, ये चाबी मैं अपने पास रखता हूं। यदि तुमने अहंकार किया या कुछ किया तो ये चाबी अगर मैं वापस ले लूं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी एक सेकंड में। जगदीश भाई कहते थे बाबा का ये जो हाथ है ना इधर है, और ये हाथ हट गया तो गया, मैं कुछ हुई नहीं। फिर जो हम यहां बैठे हैं और जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो ब्राह्मण जीवन में चल रहे, आज सुबह की साकार मुरली विजय रत्नों की निशानियां, निश्चय बुद्धि, जो हम चल रहे हैं ये भी उसकी कृपा, दया, आशीर्वाद, अनुकंपा है। भक्ति के शब्द है पर यही है सत्य, क्योंकि ये अगर हट गया तो एक सेकंड में खत्म, क्योंकि ये चाबी उसके पास है। हम चल रहे हैं तो समझना ये उसकी दया है। बिना हरि कृपा मिले नहीं संता, इतनी संत आत्माओं के साथ महान आत्माओं के बीच में यदि हम हैं तो ये उसकी कृपा है। और जीवन में जब बार बार महान आत्मा मिलते जाए तो समझना उसकी कृपा बढ़ रही है, और जैसे इन महान आत्माओं से हम दूर होते जाए तो समझना उसकी कृपा घट रही है। तो सारी प्रिडिक्शन, सारी चेतावनियां, ऐसा होगा, ये भी होगा, वो भी होगा, ऐसा भी होगा, वैसा भी होगा, हम ये कह ही नहीं सकते कि ये प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस है। एडमिशन लेट तुमने ली है, कोर्स पूरा करना पड़ेगा और उसके लिए दिन रात लग जाना पड़ेगा। जो बचा हुआ है, जो तुमने पढ़ा नहीं पुराना, वो सब पढ़ने। जरा भी अहंकार आया इस मार्ग में, जरा भी, तो चाबी गई। तो प्रिडिक्शंस, अगला, नेक्स्ट, समय। ऐसा कोई कोई बात नहीं है जो समय के विषय में सारे इशारे दे चुके आएगा, समय ऐसा होगा, समय ऐसा आएगा, ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा। एक है प्रिडिक्शंस, एक है समय के इशारे। सुनो इतिहास, समय क्या कहता है वो सुनो, सीखो समय से। समय इतिहास, समय वर्तमान, समय भविष्य, समय उसके बाद में अगला, उसको गुलजार दादी जैसा रथ इस संसार में और कहां मिलेगा। उसको गुलजार दादी जैसा रथ कहां मिलेगा। कितने जन्मों की पवित्र आत्मा है वो, पता नहीं 7 जन्म या उससे भी ज्यादा। उस दिन हमने क्लास में देखा था इस रथ के विषय में, पाठ कब से चालू हुआ, 8 साल की उम्र से, और इतना विशाल पाठ लेकर भी स्थिति कैसी थी। जब बाबा नहीं आ रहे तो जैसे सभी है वैसे है, पुरुषार्थी, कोई अहंकार, कभी कभी नहीं, किसी भी बात का अहंकार नहीं, इतनी निरागस चेतना, इतनी विशुद्ध चेतना, अहंकार से मुक्त, ऐसे को ही भगवान चुनता है। मनोरिंद्र दादी कहती थी ना, कोई पूछता था बाबा उसमें ब्रह्मा में क्यों है, तो क्या तुम में आते, दादी कैसी करती थी, तो क्या तुम में आते। और वो परम शक्ति है, उस शक्ति को समाने की ताकत चाहिए, इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी शक्ति को भीतर समाने की ताकत, वो सब में नहीं हो सकती, उसमें बहुत हाई लेवल की प्योरिटी चाहिए, वेरी एक्सट्रीम हाई लेवल प्योरिटी, तो ही हो सकता है ये काम। अगला, तो पहला एक कारण, उसको ऐसा रथ और कहीं नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, उसको ऐसा स्थान और कहीं नहीं मिलेगा मधुबन जैसा, असंख्य आत्माओं की जन्म और पालना हुई है यहां पर, यहां पर इस वातावरण में, इस स्थान पर, ऐसा स्थान निर्माण करना अगर सोचे भी वो, तो इसको कितना समय लग गया, उसको कितना टाइम लगेगा, और एक एक आत्मा का जीवन इसमें अर्पित है। हमने उस दिन देखा यज्ञ की कितनी सारी बिल्डिंग्स की चर्चा, मानसरोवर, आनंद सरोवर, शांतिवन, मनमोहिनी, सोलार, हॉस्पिटल्स की कितने सारी बिल्डिंग्स की चर्चा उस दिन की, एक एक बिल्डिंग, ओम शांति भवन की बिल्डिंग की चर्चा, ये सारा जो निर्माण हुआ, एक एक ईंट में दादी की शुभ भावना शुभकामनाएं समाई हुई है, पसीना, खून पसीना इसमें है एक एक आत्मा का। ऐसा फिर से मधुबन कहीं और बनाना असंभव है। नेक्स्ट, ऐसा वातावरण तैयार करना असंभव है। एक तो स्थान, और दूसरा ऐसा वातावरण और कहां होगा, भगवान ऐसे किसी भी वातावरण में नहीं आ जाता है। लंबे समय से जहां प्योरिटी के प्रकंपन है वैसे स्थान पर वो आता है। वो इतनी, बाबा कहते देवता इतने पवित्र है कि वो इस धरती पर पांव नहीं रखते, और भगवान कौन है फिर, पवित्रता का सागर, वो कहीं पर भी पांव रख देगा, किसी में भी पांव रख देगा, असंभव। नेक्स्ट, वो किन आत्माओं के बीच आएगा, जिन्होंने इतने समय से अपना जीवन दिया है उसको, इतने समय से उसको याद कर रहे, इतनी उसकी तपस्या कर रहे, भले उनके स्वभाव संस्कार में खोट हो सकती है परंतु पुरुषार्थी है, और वो उसने खुद भी कहा है वो सब बात है। वो इन्हीं आत्माओं के बीच आएगा, कहीं और आके नई आत्माओं का चयन करे और कहे कि ये अब ये ठीक नहीं, ये नहीं हो सकता। ये भी एक कारण है। अगला कारण, भगवान के 3 पार्ट है। पहला पार्ट है बाप का, फिर पार्ट है शिक्षक का, और तीसरा पार्ट है सदगुरु का। तो पहला पार्ट है उसका साकार मुरली। साकार मुरली में सब जगह वो बाप है, क्या कहता है, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, सारी साकार मुरलियों में क्या भरा है, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, अर्थात बाप बोल रहा है। उसके बाद में अव्यक्त वाणियों में कभी मीठे बच्चे सुना क्या, होगा कहीं एक खाद में, परंतु ये जैसा साकार में होता था, साकार मुरलिया पहले जो थी उसमें दादी जानकी का उस दिन अनुभव सुनाया था, दादी अहमदाबाद में थी और दादी को वो रिकॉर्ड आता था, तो वो भाई उनको क्या करता था, वो एडिट करके भेजता था कम करने के लिए, मीठे बच्चे मीठे बच्चे, नहीं तो एक ही मुरली में 50 बार मीठे बच्चे, वो तो कट 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 करके ऊपर रख दिया एक और बीच बीच में नीचे कभी कभी, तो पहली मुरली ऐसी रहती थी 15-15 पेजेस की, मीठे बच्चे मीठे बच्चे मीठे बच्चे मीठे बच्चे, अभी एडिटेड है। तो पहला पार्ट उसका क्या था, बाप का, उसमें साकार मुरलिया है मीठे बच्चे। दूसरा पार्ट था उसका अव्यक्त वाणिया, उसमें मीठे बच्चे नहीं है, उसमें शिक्षाएं है, स्ट्रिक्ट शिक्षाएं है, उसमें धारणाएं है। और तीसरा पार्ट उसका है सद्गुरु का, जो अब चल रहा है वरदान, अब वो वरदान से चला रहा है, वरदान से अपनी जो कुछ करना है उसको कर रहा है। और आगे पार्ट होगा साक्षात्कार का, या फिर से जो शुरुआत में हुआ था वो अंत में होगा, फिर से साक्षात्कार। वह आके अचानक आके कोई भक्ति मार्ग फिर से नहीं स्थापित कर देता है, मंत्र चैंटिंग ये सब नहीं करेगा, वो सब हो गया पाठ पूरा हुआ वो फिर से नहीं चालू कर देगा। शुरुआत में बाबा आते थे ओम ओम, सत्संग का नाम ही क्या पड़ा, ओम मंडली, क्यों क्यों पड़ा, ओम की ध्वनि, और उसमें क्या हो जाता था, सबको साक्षात्कार। और 50s में जब यहाँ आए और 54 के आसपास ये सब बंद करा दिया, तो जो बंद कराए वो फिर से चालू नहीं करेगा। तो एक कारण ये है। अगला कारण, नेक्स्ट, भगवान के तीन रूपों से वो गुजरा है, एक साकार, एक आकार, एक निराकार। एक उसका रूप था साकार जो ब्रह्मा था, ब्रह्मा के तन में, हम शिव की बात कर रहे हैं, शिव की, एक वो रूप था। उसके बाद उसका रूप था आकारी, जब ब्रह्मा आकारी है अर्थात अव्यक्त है, फरिश्ता है, उस तन में प्रवेश करके, और संडे की मुरली, लास्ट संडे की मुरली, बाप और दादा ब्रह्मा का अवतरण साथ साथ होता है। बाप अकेले नहीं आते, ब्रह्मा अकेला नहीं आता है। एक बार 69 के बाद में बाप दादा का पार्ट कैसा है, कंबाइंड है, क्योंकि ब्रह्मा की आत्मा कैसी बन गई है, उसके समान बन गई है। यह है निश्चय, आज की मुरली निश्चय बुद्धि आत्माओं की निशानी, कि वो दोनों आएंगे तो एक, वो अब जुदा नहीं है, क्योंकि उसकी आत्मा ने वो प्यूरिटी हासिल कर दी है जो उस परमात्मा की प्यूरिटी। और कितना टाइम लगा, उसकी भी अपनी यात्रा है, 33 ईयर्स लगे उसको यहां तक पहुंचने के लिए, एक दिन में नहीं पहुंचा है वो। इंटेंस सेल्फ चेकिंग, दिन रात सेल्फ चेकिंग, दिन रात चिंतन, दिन रात अंदर आंतरिक मौन, और वो करते करते वो उस ब्रह्मा की आत्मा, शिव की आत्मा जैसे। इसका उदाहरण बाइबल में है, कहां पर जीसस कहता है दिस सन ऑफ मैन, ये ईश्वर का जो पुत्र है, एक दिन मैं यहां से चला जाऊंगा, इस दुनिया में मैं नहीं रहूंगा, पर फिर मैं जो मेरा पिता है उसके बाजू के आसन में जाके बैठूंगा। जीसस कहता है कि मैं कहां जाके बैठूंगा, जो मेरे पिता का आसन है ना उसके बाजू में मैं जाके बैठूंगा। तो ये भी वैसा ही है अवतरण। तो ये ब्रह्मा साकार तो चला गया, पर उसके बाद का उसका पार्ट किसके साथ है, सीधा उसके साथ, और वो दोना दोनों अलग नहीं हो सकते, एक है एक, और वो आएंगे भी तो एक साथ। इसके लिए अव्यक्त पार्ट, और जो भी स्प्लिंटर्स ग्रुप निकले, उस दिन भी कहा था 76 में जो पहला स्प्लिंटर ग्रुप निकला, उन्होंने ये आइडिया को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, शिव जो है वो किसी भी कुमारी के तन में नहीं आएगा, उनका ये मेन सिद्धांत था। और वो कैसे आएगा, वो परमानेंट बैठेगा उसके तन में, शंकर के तन में। और राम का पार्ट वो माँ का पार्ट था, ब्रह्मा का अभी उसके पिता का पार्ट चालू है, राम का पार्ट। तो एक नया ग्रुप बना, और नकली जो होता है ओरिजिनल नंबर टू पे चला जाता है एक्टिंग में क्योंकि प्रैक्टिस और वो सब चीजें रहती है उसमें, रिहर्सल होती है। तो बाबा का अब जो पार्ट चालू है वो है निराकार। यहां था साकार, फिर था आकार, और फिर है निराकार। ये निराकार उसका पार्ट चालू। नेक्स्ट, अगला कारण, अभी इंट्रोडक्शन का पार्ट उसका पूरा हो चुका है, अभी फिर आके इंट्रोडक्शन नहीं देगा वो, अभी उसका करने का पार्ट चालू है, डूइंग का पार्ट है, करो, या तो साक्षात्कार का पार्ट, करने वाला इंट्रोडक्शन देने का जो पार्ट था ना, मैं ये हूं, मैं वैसा हूं, वो फिर से आके अपना इंट्रोडक्शन थोड़ी देगा, इतने साल दिया है, इतनी शिक्षाएं दे दी, अब क्या करना है तुमको, करो जो कुछ कहा है वो करो, और कितना देगा और कितना सुनाएगा और कितना बताएगा। तो इंट्रोडक्शन पार्ट इज ओवर, अभी कौन सा पार्ट चालू है, डूइंग का पार्ट चालू है, करने का पार्ट चालू है, करो का पार्ट चालू है। उसके बाद उसके दो प्रकार के पार्ट, एक तो एक वृद्ध तन में वो प्रवेश करता है, वो ये दिखाने के लिए कि अनुभवी तन, कि ये दिखाने के लिए कि ये भी कर सकता है, ब्रह्मा ने करके दिखाया वो पुरुषार्थ। नहीं तो ब्रह्मा के उस उम्र में व्यक्ति क्या सोचते हैं, रिटायर होने की सोचते हैं, और वो भी सोच ही रहा था अभी, हाँ, तो उसके बाद ही। और जो कल भी हमने देखा, दादी ने अपना पार्ट देखो कब चालू किया, लंदन पहुंची, कितनी उम्र थी, 58, इस उम्र में तो रियल पार्ट उधर चालू हुआ विदेश का, यहाँ तो चल ही रहा था, पर जो रियल था वो सारे विश्व में संदेश फैलाने का, वो इस उम्र में। तो ये भी सब लोगों ने, दादियों ने कहाँ से सीखा, क्योंकि उनके सामने एक रोल मॉडल था, उनके रग रग में वो समाया था, उसकी यादें समाई थी। तो ब्रह्मा एक आदर्श उदाहरण है किसका, ये कर सकता है। और दूसरा आदर्श उदाहरण एक युवा का, और वो दादी गुलजार। एक तो इसका और एक उसका। जैसे हम साकार में कहते हैं एक मम्मा एक बाबा, एक युवा एक बुजुर्ग, उसी तरह अवतरण के इसमें, एक तो इसमें और या तो एक इसमें, बस। एक कारण और है पर वो हमें ठीक से पता नहीं है, पर किसी ने बताया हमें कल कि भक्ति मार्ग में दो नंदी दिखाते हैं, एक छोटा एक बड़ा, ऐसा है, तीसरा नंदी, अब वो ये थोड़ा ये हमें पता नहीं है नंदी का, ये नंदी वाली स्टोरी कितनी भक्ति मार्ग की सही है तो और नंदी को हमेशा उसके सामने दिखाते, और नंदी उसका क्या है, उसका वाहन है, उसका दोस्त है, और क्या है उसका, खबरी है, अच्छा खबरी भी है नंदी के कान में बोलना पड़ता है तो ब्रह्मा उस तक पहुंचता है, शिव तक, अच्छा चलो ये एक ऑप्शनल कारण है पर नंदी भी बताते हैं कि दो ही नंदी है, पर ये थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि कितने नंदी होते हैं। तो एक तो ये, उसके बाद नेक्स्ट, अभी किसी न्यू लॉजिक की आवश्यकता नहीं है क्लैरिफिकेशन के लिए, न्यू लॉजिक नॉट नीडेड, न्यू क्लैरिफिकेशन, जितना क्लैरिफिकेशन हो चुका है वो बहुत हो चुका है, अभी और कोई नया लॉजिक कि ऐसा है वैसा है, बहुत सारे लॉजिक दिए जा सकते कि हीरा तो डिब्बी में है, तो किसी भी डिब्बी में हीरा हीरा है आखिर, क्योंकि माया जो है बहुत बलवान है और शक्तिशाली है। चार्ली चैपलिन भूलना मत, नंबर टू मिला था चार्ली चैपलिन को, वो ओरिजिनल होने के बावजूद भी तो न्यू लॉजिक की जरूरत नहीं है। तो इस तरह के वाक्य, क्या बाप से सच्चा प्यार नहीं है जो किसी कहीं पर भी आ जाए तो तुम उसको पहचान सको? क्या इतना भी प्यार नहीं है बाप से? अगर ये है तो तुम्हारा सच्चा प्यार है। ऐसे ढेर सारे नए लॉजिक्स, तर्क वितर्क, जो कि तो ये भी लॉजिक है। और ऐसे लॉजिक जो सोचने के, हाँ ये तो सही है, तो ये है 17वां। अगला ड्रामा, वो चाहता तो ये राइट है, कुछ भी कर सकता है, एक्सेप्टेड। उसके लिए वो परमात्मा है, उसके लिए कोई बंधन थोड़ी ना है। वो जब चाहे जहां चाहे आ सकता है, जा सकता है, रह सकता है, जो उसको करना है कर सकता है। परंतु गीता में लिखा हुआ है, अर्जुन से कृष्ण कहते हैं कि यदि मैं नियमों को तोड़ूंगा तो मेरा अनुकरण सब करें, सब के सब करेंगे। इसके लिए मैं नियमों को नहीं तोड़ता। बाप कहते हैं, बाप भी ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। मैं सर्वशक्तिमान हूं, इसका मतलब ये नहीं कि जो चाहे तो कर दो। तुमको खांसी है, ब्रह्मा की खांसी उसने लास्ट तक ठीक नहीं की, की क्या लास्ट तक? मैं ये सब काम करने थोड़ी ना आता है। अभी अभी मुरली में था ना, 3-4 दिनों में। ये तुम्हारी बीमारी ठीक करने आया हूं मैं, तुम्हारी बीमारी ठीक करूं, तुम्हारा धंधा ठीक करूं, इंटरव्यू में तुमको पास करूं, ये सब काम करने मैं नहीं आता हूं। मैं एक ही काम करने आता हूं, पतित को पावन, दैट्स इट। मेरा एक ही काम है, बाकी काम लाने ही मत मेरे सामने। इसकी बुद्धि का ताला खोलो, पति की बुद्धि का ताला खोल दो, मेरे बेटे को ज्ञान में ला लो, मेरी बेटी को बाबा ब्रह्मा कुमारी बना दो, ये सब काम करने मैं नहीं आता हूं। ये सेवा में सफलता दे दो, ये दे दो, वो दे दो, सेंटर के लिए जमीन चाहिए, जमीन दे दो, मैं क्यों दूं? तुम अपने पुरुषार्थ करो, ये सब काम मैं नहीं करता। भगवान दो डिपार्टमेंट में इंटरफियर नहीं करता है, एक प्रकृति के डिपार्टमेंट है और एक कर्म के डिपार्टमेंट में। तुमने जो किया है तुमको मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसा करे तो तसफल चाखा। जिसने जो किया है उसको मिलेगा। कर्म का फल कर्ता को ढूंढ ही लेता है, जैसे गाय का बछड़ा गाय की अपनी माँ को ढूंढ लेता है। अगर तुमने कुछ किया है तो उसका फल कहीं पे भी जाके छिप जाओ। वो कर्म का फल तुमको ढूंढते 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 पहुंच जाएगा। तुम छूट ही नहीं सकते। और कर्म और ऊपर से दिखाई देगा। कल रात में भी कह रहे थे, कोई असत्य के मार्ग पर चल रहा है और सफलता ही सफलता मिल रही है, और हम सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं और असफलता हर कदम पर, अपमान, ग्लानी, निंदा और असफलता। असत्य के मार्ग पर कोई है और उसको क्या मिल रहा है? सफलता ही सफलता। परंतु असत्य की नाव, असत्य की नाव हिलेगी डुलेगी नहीं। असत्य की नाव अच्छा लड़ोल चलती है, असत्य की नाव हिलती डुलती नहीं है बिल्कुल भी, एकदम अच्छा लड़ोल चलती है। जो होता है वो एक दिन धड़ाम से छपाक एकदम डूबती है। हाँ, वो सत्य की नाव है जो हिचकोले खाती रहती है, कभी इधर कभी उधर। ये क्या चल रहा है? यही निश्चय है, सत्य ही सत्य है। सत्य का कभी विनाश नहीं होता, सत्य में जयते। एक दिन सत्य की ही जीत है, कि असत्य कितना भी बड़ा हो। रावण ने पूरे आकाश में बाण से आकाश को भर दिया, राम ने एक तीर चलाए सारे बाण खत्म। ओरिजिनल रामा। तो ड्रामा, ड्रामा प्लान अनुसार भगवान चलता है। बाबा तो ये कहता है कि मैं ड्रामा मुझसे ज्यादा पावरफुल है, मैं कम पावरफुल, ड्रामा मुझसे, मैं ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ। बाबा चाहता सब कुछ करता, परंतु वो वैसा नहीं करता, क्योंकि वो अगर करे तो सारे वैसे ही करेंगे। दादी जानकी को कुछ फर्क पड़ेगा? यदि दादी जानकी कुछ बाहर का खा ले एक दिन। कितने साल की तपस्या, 80 वर्ष की तपस्वी है, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। पर वो कभी नहीं करेंगे ऐसा। क्यों? क्योंकि वो करते देखा तो ये जो अभी अभी आए हैं उभरे हुए चिल्लू पिल्लू नींबू टिंबू वो सब करेंगे, वो करते तो हम भी करें। हम कोई कम योगी थोड़ी ना है। हम भी अपने दृष्टि दे दे के सब कुछ खाएंगे। हम भी बिस्किट खा लेंगे, हम भी बाहर का आइसक्रीम खा लेंगे, हम भी कोको कोला पेप्सी लिमका, ये तो सब मशीन मेड है ना। मशीन अपने आप चलती है क्या? ये बिस्किट, ये चॉकलेट्स, ये ब्रेड, ये सब हम खाएंगे। जब करेंगे तो ज्यादा कर देंगे। कितने हो गए? 18 ड्रामा। तो इतने ये पॉइंट्स है। मनमत चिंतन है, पर फिर भी अगर किसको लगता है कि ये सही नहीं है तो इन ब्रैकेट मनमत, अपना चिंतन करो। तो कितने कारण बताए? पहला, जितना ज्ञान देना था वो दे दिया। पहला था बेसिक कोर्स, फिर था एडवांस कोर्स। अब एडवांस कोर्स भी पूरा हो गया, अब क्या चाहिए? पहला बेसिक था, फिर था एडवांस, एडवांस पूरा हो चुका है। अब सेल्फ स्टडी, अब बैठ के करो जो करना है। नेक्स्ट योग, कितना योग सिखाएगा, कितनी सारी ड्रिल्स है। नहीं है तो क्रिएट करो अपनी अपनी ड्रिल्स। और अभी हम होमवर्क देने वाले हैं ड्रिल क्रिएट करने के लिए, आया है होमवर्क 28-29 से। नेक्स्ट धारणा, सारी धारणाओं की सारी पॉइंट सुना दिए। नेक्स्ट सेवा, कितना सेवा का विस्तार हो चुका है, बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया, ऑनलाइन सेवा है। नेक्स्ट माया के बारे में सब कुछ बता दिया। नेक्स्ट चेतावनियाँ सारी दे दी है, विनाश से लेके तो सब कुछ। अगला समय के सारे इशारे बता दिए। नेक्स्ट गुजर जैसे जैसा रत्न नहीं मिलेगा, स्थान जैसा कोई मधुबन नहीं मिलेगा। धन्य भाग भूमि पंत पहारा, नाथ पाव तुम धारा, जहाँ हे नाथ तुमने पाव धारा धरा है, ऐसा मधुबन संसार में तो कहीं नहीं। अगर कोई बनाना भी चाहे मैन मेड, ये गॉड मेड है। चलो 100 साल दे दिया किसी को और कहो मधुबन बनाओ, मधुबन में बना भी ले और वहां पे लोगों को पैसा दे दे के एम्प्लॉय भी करे हो नहीं सकता, असंभव। नेक्स्ट वातावरण ऐसा पवित्र शुद्ध वायुमंडल, और कहां कितनी भट्टियां हो रही है कंटिन्यूस। एक ग्रुप जाता है एक भट्टियां हो रही है, एक वहां वहां वहां, नीचे 3 हो रही है, यहां 2 चल रही है, नॉन स्टॉप अखंड तपस्या चालू ही रही। नेक्स्ट हम जैसे उसको कहां मिलेगा? ये तो बाबा ने कई बार कहा है, तुम्हारे तुम जैसे मुझे कोई नहीं मिलेगा। और नहीं बाबा कहते थे, नहीं दादी भी कहती थी ना कि हम जैसा तुमको कोई नहीं मिलेगा, ढूंढो जहां ढूंढना है, हम जैसा तुमको कहीं नहीं मिल सकता। हाँ तो जो वो तो उसकी महिमा, यहाँ हम अपनी महिमा बता रहे, हम जैसा उसको कोई नहीं मिल सकता। नेक्स्ट 3 रूप उसके, तो उसका बाप का रूप मीठे बच्चे मीठे रूप, शिक्षक का रूप, शिक्षाएं दी है उसने अव्यक्त वाणियां, और अभी चल रहा है उसका वरदान, जिसको लेना है लो समझो अनुभव करो। नेक्स्ट उसके साकार आकार और निराकार, अब निराकार पार्ट चल रहा है। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन का पार्ट पूरा हुआ, अभी करने का पार्ट चल रहा है। नेक्स्ट वो कोई नया लॉजिक नहीं देगा, और वृद्ध तन और एक कुमारी तन, और वो आता भी ऐसे तन में जो बहुत प्योर हो तो ही आएगा, नहीं तो नहीं। नेक्स्ट नया लॉजिक वो फिर से नहीं देता है। ड्रामा, तो ड्रामा में पार्ट ही उसका ऐसा है, वो कोई नया पार्ट नहीं चालू करेगा अपना। तो अब समय कौन सा है? समय के इशारों को समझना, माया के रूप को समझना, और अपने आप को अचल अडोल रखना, किसी भी बात में उन्हें संशय नहीं होता। आज के प्रश्न का उत्तर साकार मूल्य। दूर उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे आदि योगी, परमात्मा को आदि योगी का एक बहुत बड़ी मूर्ति भी आदि योगी की कोयम्बतूर में, शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे मौन से सब कह रहे आदि योगी, योग के स्पर्श से अब योग में करना है। हाँ योग में करना है तन मन श्वास शाश्वत सनन सननन प्राण गुंजन घनन घनन उत्तरे मुझ में आदि योगी। अब जो ये इच्छा है कि मुझ में वो आए तो उसकी याद आए, वो नहीं आएगा किसी में। उत्तरे मुझ में आदि योगी वो ब्रह्मा है, बस ये ब्रह्मा का गीत है। अब अगर आता उतरना है तो उसकी याद। ओम शांति।
चूरा पूर्ण होने दो मुझे और